चर्चा का विषय है।
ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर पद्म पुरस्कृत किसानों के साथ विशेष बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित किसान उमाशंकर पांडे, रामशरण वर्मा, कमल सिंह चौहान और सेठपाल सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
हमारे किसान देश के अन्नदाता हैं और देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव भी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में बड़ी आबादी सीधे या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। देश में फसलों की बेहतर पैदावार के लिए उर्वरकों का उपयोग होता है और जरूरी भी है, लेकिन उनका अत्यधिक उपयोग मिट्टी की सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संतुलित उर्वरक उपयोग, नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी पहलों के माध्यम से एक नई सोच को बढ़ावा दिया है। कम लागत, बेहतर पैदावार और स्वस्थ धरती। रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे पद्मश्री से अलंकृत विशेषज्ञ और अपने किसान भाइयों से, जिन्होंने जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बांदा से जल योद्धा श्री उमा शंकर पांडे जी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से श्री रामशरण वर्मा जी, हरियाणा के सोनीपत से श्री कमल सिंह चौहान जी और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से श्री सेठपाल सिंह जी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद।
और कार्यक्रम का हम आगाज करें, सबसे पहले आप उमा शंकर जी, आप भी पद्मश्री से अलंकृत है और जल योद्धा के नाम से आप जाने जाते हैं, तो आप में ये जो प्रोत्साहन है जल संरक्षण के लिए कुछ कर गुजरने की जो सोच आई वो कैसे आई?
मेरा जन्म बुंदेलखंड के बांदा जनपद के एक छोटे से गांव जखनी में हुआ। जल संकट की समस्या के कारण मेरे गांव के लगभग 80% लोग गांव छोड़कर चले गए थे। जल गुरु मेरी माँ है और सबकी माँ गुरु होती है, तो मैंने समुदाय के आधार पर पुरखों के जल जोड़ने के जो बेहद तरीके थे, एक छोटा सा उसका नारा खेत पर मेड़ पर पेड़ का लेके मैं चला, जिसका मतलब है खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। मिट्टी नहीं बरसती, पानी बरसता है। उपजाऊ मिट्टी बनने में 600 वर्ष लगते हैं, तो मुझे इस क्षेत्र के लिए देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली समिति ने पानी और पर्यावरण के लिए पद्मश्री प्रदान की, जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया था। और मेरा लगभग 30 वर्षों से अधिक का काम समुदाय के आधार पर, जो पुरखों ने कुआं तालाब मिट्टी के लिए काम किया है, प्राकृतिक खेती के लिए काम किया, जैविक खेती के लिए काम किया है, वह काम मैंने सूखे क्षेत्र कहे जाने वाले बुंदेलखंड में किया है, जिसका विवरण मैं अभी आपके साथ हम लोग साझा करते हुए रखेंगे।
जी हाँ, कवल जी आपसे जानना चाहूंगी कि आपने खेती में किस तरह से नए प्रयोग करके एक नई दिशा दी किसानों को।
मैं एक छोटा सा किसान था, खेत की किसान की आमदनी कैसे बढ़े इस विषय पर काम किया, क्योंकि मुझे कुछ कर्ज देना था और 15-16 वर्ष की आयु में मैंने खेती शुरू की थी, तो मैंने इसमें बहुत से प्रयोग करता रहा। मैं तो मेरा विषय यही रहा कि एक किसान की आमदनी कैसे बढ़े, इससे विषय पर मैंने बेबी कॉर्न की खेती का एक प्रयोग शुरू किया, जिससे किसान की आमदनी 4 गुनी हुई, 500 लोगों को लोकल स्तर पर महिलाओं समेत रोजगार मिला और 10,000 किसानों की आमदनी 4 गुनी हुई, इसलिए मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
और अगर सेठपाल जी आपसे जानना चाहूं, तो आपने जैविक खाद के ऊपर बहुत प्रयोग किए हैं, तो हमारे जो श्रोता हैं उनको बताएं इस बारे में।
आपने कहा है मेरा गांव ननदी फिरोजपुर जनपद सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश का गांव है और मैं किसान परिवार से आता हूं। जनरली हम लोग गन्ना, गेहूं और धान की खेती करते थे और जब हमारे एक प्राविधिक सहायक इंद्रपाल सिंह तोमर जी हमारे संपर्क में आए, तो उन्होंने कहा भाई आप इसको छोड़ करके आप कृषि विविधीकरण को अपनाइए, जिसमें दलहन भी है, तिलहन भी है, गन्ना भी है, गेहूं भी है, धान भी है, बागवानी भी है, पशुपालन भी है, और इन सबको लेकर के हमने फसल अवशेष प्रबंधन को हमने अपनाया है, हमने सह फसली को अपनाया है, हमने हरी खाद को अपनाया है, हमने पशुपालन को अपनाया है, और जो सबसे ज्यादा हमारा वो हुआ, हम प्लेन खेत में सिंघाड़े की खेती करते हैं, जो एक लोगों के लिए एक आश्चर्य से कम नहीं है, और उसमें जो उसका उत्पादन लेने के बाद सबसे लास्ट में जो उसका अवशेष बचता है हमारे खेतों में जो कंपोस्ट होता है उसमें जो हमारा जीवांश कार्बन बढ़ता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047 तक, जिसमें खेत को हम जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए उसका एक आधार है। अभी आपने जैविक खाद के बारे में बताया, जितना भी हमारा पशुओं का गोबर है उसको हम केंचुए के माध्यम से, जो हमारा खेत का अवशेष है, फसल अवशेष, जो हमारे खेत की खरपतवार है, उन तमाम चीजों को लेकर के हम उसमें केंचुए से खाद बनाते हैं और उसके माध्यम से हम चाहे ट्राइकोडर्मा हो, विवेदिया बेसिया ना हो या शुडोमोनास, उन तमाम चीजों को इस्तेमाल करके खेत में काम करते हैं।
राम शरण जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या अनुभव रहा, आपको किस चीज के लिए, खेती में किस प्रयोग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया?
हम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आते हैं, हमारा नाम राम शरण वर्मा है। 1988 से हमने खेती शुरू की, हमारे पास 6 एकड़ जमीन थी, हमने बैलों से हल चलाया, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, फिर हमने अपने पिताजी की खेती को आगे बढ़ाया, वो पुरानी परंपरागत खेती करते थे, हमने डाइवर्सिफिकेशन किया, गेहूं चावल के साथ साथ केले की खेती शुरू की, फिर टमाटर की खेती शुरू की, फिर आलू की खेती शुरू की, जहां हमारे जो छोटे किसान हैं लघु एवं सीमांत किसान एक एकड़ में 15,000 से 20,000 रुपया पैदा करते थे, तो उनकी आमदनी 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति एकड़ हो गई। अब आज तक उत्तर प्रदेश में देखा जाए, पूरे भारत में लघु एवं सीमांत किसान हैं। हमने एक कृषि फार्म बनाया, उच्च कृषि तकनीकी सलाह केंद्र, तो उसके माध्यम से हमने लाखों किसानों को अपने खेत पर जानकारी दी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो टिश्यू कल्चर केले की खेती है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने 2019 में हमको पद्मश्री दिया, चूंकि केले की खेती महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में होती थी, उत्तर प्रदेश में उसके लिए जलवायु नहीं थी, तो हमने केले की खेती शुरू की। आज टिश्यू कल्चर केले की खेती है, 1 लाख हेक्टेयर में हो रही है, 50,000 किसान खेती कर रहे हैं, और जो हमारा कृषि का मॉडल है, हमने 6 एकड़ से शुरू की, आज हम 300 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, उससे हम करीब 30,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उसके साथ हम टमाटर की खेती करते हैं, विविधीकरण मॉडल शुरू किया कि केले में नुकसान हो तो टमाटर में फायदा हो, टमाटर के एक स्टेकिंग खेती है, जहां उसकी पैदावार 200 कुंटल होती थी, तहां एकड़ में 600 कुंटल हो गई। कहने का मतलब जो है, हमने छोटे किसानों के लिए जो जिनकी आमदनी 20,000 रुपया थी, आज 2 से 2.5 लाख रुपया हो रही है, इसी के लिए हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया
जी। और आप सबके ये जो गुर देखकर जो देश भर से लोग आते हैं सीखने के लिए और उसे जानने के लिए, और आज भी हम लाभान्वित होना चाहेंगे आपके इन्हीं कार्यों से और इन्हीं अनुभवों से। सबसे पहले हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो रासायनिक जो उर्वरक है उसके संतुलित उपयोग के बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिट्टी के जो पोषण तत्व हैं और जो हमारे स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर उमा शंकर जी आपसे ही अगर शुरुआत की जाए, तो जो अत्यधिक यूरिया या रासायनिक उर्वरक का जो फसल और मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है?
जो रासायनिक खेती है, लगभग हमारे देश में कुल 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि हमारे पास है, जिसमें से 18.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि में हम खेती करते हैं, 12 करोड़ हेक्टेयर भूमि लगभग सिंचित है, बाकी असिंचित है। हरित क्रांति के बाद हम भोजन पर तो आत्मनिर्भर हुए, लेकिन जो शुद्ध भोजन था, परंपरागत पुरखों का जैविक भोजन था, उसका नुकसान हुआ। उसके परिणाम क्या हुए कि कैंसर जैसी ट्रेन जाने लगी। एक सर्वे के मुताबिक आप देख रहे हैं कि 10% व्यक्ति दवाइयां ले रहा है, ये सामान्य सर्वे है, वो ज्यादा भी हो सकता है। फल सब्जी खाद्यान्न चीजों में सब में एक तरीके से जहर घुल गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रसायन खाद्य मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने, सबने एक साझा पहल की है, और हम जो पानी और पर्यावरण के क्षेत्र में, मुझे खासकर मैं उसका जानकार हूं और मिट्टी पानी का विद्यार्थी हूं, जिसके लिए मुझे पद्म सम्मान पद्मश्री मिला हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि यदि मानव को स्वस्थ रहना है, जीवन में जीना सब कोई चाहता है, लंबा जीवन जीने के लिए हमको प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। और जो यूरिया है, डीएपी है, एक तो देश का पैसा विदेश जा रहा है। एक बोरी डीएपी लेने के लिए सरकार देती है विदेशों को 4,500 रुपया और किसान को मिलती है 1,400 रुपये में। लेकिन ये जहर जब खेत में पड़ता है, तो एक बोरी जब डीएपी डालते हैं खेत में, तो 5 या 6 लीटर अतिरिक्त पानी चाहिए। पानी खेत के अंदर सोखने की क्षमता कम हो रही है, केंचुआ हमारे मर रहे हैं, कीट मित्र हमारे मर रहे हैं। तो एक तो नुकसान ये हो रहा है, दूसरा वो एक बंजर भूमि हो रही है, और वो जो पानी के कारण जो हमारी 20,000 टन मिट्टी बह करके जा रही है, वाटर लेवल कम हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो इन सब को लेकर के हमको बचने के लिए प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। मेरा जैसे जलग्राम
मेरे मॉडल पर 250 जल ग्राम बनाए गए, अटल भूजल योजना बनाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांदा के काम की अगर केवल बात करूं तो 100 में 4 बार मन की बात में उन्होंने बांदा के विभिन्न काम का जिक्र किया है। तो ऐसे जो सामुदायिक प्रयास होते हैं, मेरा कहना है खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में, घर का पानी घर में, गांव का पानी तालाब में, ये हमारा सामुदायिक प्रयास है।
आपसे जानना चाहूंगी कवल सिंह जी कि मिट्टी की जांच और संतुलित उर्वरक प्रबंधन का क्या महत्व रहता है?
देखिए, किसान पहले मिट्टी की जांच नहीं करवाता था, पर किसान को पता होता था कि मेरे खेत को क्या क्या जरूरत है, उसके हिसाब से जरूरतें पूरी करता था। ऐसे ही किसान मौसम का वैज्ञानिक भी था। पहले जो पुराना किसान था उसको सब चीजों का ज्ञान था, और हम ना यूरिया का प्रयोग कर रहे थे, ना डीएपी का प्रयोग कर रहे थे, ना ही हाइब्रिड बीज का कर रहे थे, पर फिर भी आमदनी थी। उसको ज्ञान था कि क्रॉप पर रोटेशन देनी है, किसके साथ क्या बोना है, ये सब ज्ञान किसान के पास था। वो ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया, और हमारे वैज्ञानिकों ने जो नई खोज की प्राकृतिक चीजों की बजाय रासायनिक खाद लेकर आए, पेस्टिसाइड लेकर जाए, इंसेक्टिसाइड लेकर आए, जो खाद्यान्न की कमी थी वह पूरी हो गई। परंतु हमारे से गलती हो गई कि जो हम पैदा कर रहे हैं आज वो खाने योग्य नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, कि लोग उससे बीमार हो रहे हैं और धरती भी माता भी हमारी बीमार हो रही है। तो हम सब वैज्ञानिकों ने, सब लोगों ने ये तकरीबन ये बात सीख ली है, इसमें बदलाव की जरूरत है। इसका मुख्य कारण रहा असंतुलित प्रयोग रासायनिक खादों का, जो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं किसानों ने उससे ज्यादा प्रयोग किया और संतुलित रूप से प्रयोग नहीं किया। तो हम सबको, किसानों को संतुलित खाद का प्रयोग करना चाहिए, खाद का कम से कम प्रयोग करें, अपनी भूमि में जीवाश्म बढ़ाए, और केचुआ जो हमारा एक तरह से मिट्टी को खाद्य बनाने का काम करता था वो खत्म हो गया है, और हमारा वातावरण में जो पक्षी कीड़ों को खाते थे शत्रुकीट वो भी खत्म हो गए हैं। तो हमें पुनः इस बात पर सोचने पर हम मजबूर हुए हैं, और दोबारा हमें संतुलित खादों का प्रयोग करके हमें केचुआ लाना होगा, और प्राकृतिक संसाधन से हमें अपने खेत का जीवाश्म बढ़ाना होगा, तभी अच्छी खेती, स्वास्थ्यवर्धक खेती, प्राकृतिक खेती हो सकती है।
रामशरण जी, अगर हम बात करें संतुलित उर्वरक प्रयोग से कैसे फर्क पड़ सकता है, मतलब क्या उससे खेती में भी, अगर पैदावार में भी कमी ना आए और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो?
तीन प्रकार की नाइट्रोजन है मुख्य तौर पर, यूरिया, डीएपी एवं पोटास। तो हमारे किसान भाइयों को तीनों खाद डालना चाहिए, जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं उस हिसाब से डालना चाहिए। अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो यूरिया का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ी इसकी जानकारी है। लोग धान में एक एक एकड़ में 3 से 4 बोरा डाल रहे हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हमारी जमीन के लिए हानिकारक है। अपने हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि जो यूरिया के साथ साथ जैसे हरी खाद है, हरी खाद उगाएं और 45 दिन के बाद खेत में काट करके उसमें पलट दें, तो उससे पैदावार हमारी बढ़ेगी और हमारी जमीन स्वस्थ रहेगी। उसके साथ साथ हम अपने जो किसान भाई हैं उनको ये भी हम बताएंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं केवल यूरिया डालते हैं, यूरिया नहीं, संतुलित खाद को हमको डालना है, हमको गोबर की भी खाद डालना है, हरी खाद भी डालना है, नाइट्रोजन भी डालना है, पोटास भी डालना है। जैसे हम एक उदाहरण पेश करें कि यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हमको संतुलित भोजन खाना है, दूध भी खाना है, फल भी खाना है, अनाज भी खाना है। यदि हम सब तरीके का भोजन करेंगे और मेहनत करेंगे और सोएंगे और रेस्ट करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। उसी तरीके हमारा पौधा ये भी चाहता है कि हमको नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस मिले, और जमीन को यदि हमको स्वस्थ रखना है, एक तरफ यदि भारत सरकार एक बहुत बड़ी रकम 2 से 3 लाख करोड़ डेली सब्सिडी देती है, दूसरी तरफ हम ज्यादा डाल रहे हैं तो अपनी जमीन को बीमार कर रहे हैं, तीसरी तरफ उल्टा जो उसका गेहूं चावल हम खा रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहा है, उससे बहुत सारी बीमारी हमारी जो है प्रकट हो रही है। तो इसे फसल चक्र है, एक फसल के बाद हम दूसरी फसल लगाते हैं तो हमको 30% हम कम खाद डाल करके 40% उत्पादन मिलता है। जैसे हम आलू खोद करके जो है हम मक्का लगाते हैं या उड़द लगाते हैं तो हमको खाद देने की जरूरत नहीं है, केला काट करके हम गेहूं लगाते हैं तो उसमें हम कोई खाद नहीं देते हैं। वैसे हम केले की खेती, टमाटर की खेती, आलू की खेती, आलू की खेती करीब 150 एकड़ पर कर रहे हैं, केला करीब 100 एकड़ पर कर रहे हैं। तो एक विविधीकरण ऐसा है कि आप केला काट करके आप हम गेहूं लगाते हैं तो कोई खाद देने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने किसान भाइयों को सलाह देंगे कि जो उर्वरक हमको बहुत संतुलित उर्वरक डालना है, इससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। ये बहुत ही आज समय की मांग है और हमारे देश की मांग है।
आपसे जानना चाहूंगी मैं सेठपाल जी कि यूरिया कम करने और रासायनिक जो उर्वरक है उनको कम करने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं, जैसे आप जैविक खाद के बारे में भी बहुत जानते हैं तो उस बारे में भी हमारे श्रोतागण हैं उनको बताएं।
देखिए पहली बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे देश में एक सोयल हेल्थ कार्ड का एक प्रोग्राम चलाया था और उसमें पूरे देश में निकल करके आया कि हमारे खेत का स्वास्थ्य कैसा है। यदि हमारी माँ स्वस्थ होगी तो उसमें उत्पन्न होने वाला हमारा बच्चा जो है वो स्वस्थ होगा, यही ठीक हमारा। तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा सोयल हेल्थ कार्ड आता है उसके अंदर जो हमारे साइंटिस्ट रिकमेंडेशन करते हैं एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, उसके बाद कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट का वो करते हैं, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें सूर्य की प्रकाश से उसे मिलते हैं, तो जो हम लोगों ने जो अधिकता उपयोग की है उसकी फास्फोरस की और नाइट्रोजन की है। उसमें सोयल कार्ड में एक और भी लिखा होता कि 50 से 60 टन पर हेक्टेयर हम गोबर की खाद देंगे। हमारे किसान ने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल रासायनिक खादों के ऊपर उन्होंने अपने आधारित रहे हो, तब जबकि ये ही हमारे किसान का एक सबसे हानिकारक एक रोग, चूंकि यदि हम संतुलित उर्वरक देंगे तो उसमें हमारी फसल भी होगी, हमारा उत्पादन गुणवत्ता युक्त होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जो पर्यावरण के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए पानी के प्रदूषित होने से बचाने के लिए वो एक सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। जैसे आपने नाइट्रोजन के बारे में दूसरे खादों की बात की है, मेरा मानना है हमें अपने खेतों में दलहन तिलहन का समावेश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी दलहन तिलहन की जो फसलें हैं वो अपनी जड़ों में गांठे बनाकर वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है। हमें फसल अवशेष को अपने खेतों में लाना चाहिए गोबर की खाद के रूप में, हमें फसल चक्र के रूप में, हमें केंचुए पालन की खाद के रूप में। मेरा मानना यह है अगर हमें अपरिहार्य कारणों से हमें रासायनिक उर्वरकों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी नैनो पोटास नैनो जिंक जो हमारे पास आए हैं, चूंकि वो हमारे उसको जमीन के स्वास्थ्य को कम खराब करते हैं, वो सीधा पौधों को अवशोषित होकर के उससे हमारा ज्यादा लाभ मिलता है।
उमा शंकर जी, आपने जल संरक्षण प्रणाली में जखनी गांव की तस्वीर बदल दी और सामुदायिक सहभागिता से जल संरक्षण की दिशा में कई प्रयास किए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि जल का सही प्रबंधन कैसे उर्वरक का उपयोग कम कर सकता है और जो मिट्टी की शक्ति है उसे बढ़ा सकता है।
आपको याद होगा कि बुंदेलखंड वही है जहां मालगाड़ी से पानी जाता था, किसानों की आत्महत्याएं की बात बहुत हुआ करती थी और दिक्कत थी। राज समाज सरकार तीनों ने सामूहिक प्रयास किया, किसानों ने भी मेहनत की और आपको यह भी ज्ञात है कि बुंदेलखंड देश का पहला भूभाग है जहां सबसे कम रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, पंजाब इलाके में ज्यादा हो रहा है उधर कम हो रहा है। 4 करोड़ टन यूरिया का इस्तेमाल लगभग होता है, 3 करोड़ टन हमारे यहां लगभग डीएपी का होता है, 1 करोड़ टन के आसपास पोटास और अन्य डाला जाता है, 2 लाख करोड़ रुपया सरकार का इस काम के लिए विदेश या सब्सिडी के रूप में जा रहा है। हम थोड़ा जागरूक हों, परंपरागत खेती करें, जो हमारे पुरखों के खेती करने के बाजरा जौ धाने भी ऐसी हैं अभी जिनमें कम गेहूं भी हमारे पास कठिया गेहूं जैसे बुंदेलखंड में होता है, इस पर भी हम कुछ बात करें। और साथ में सबसे बड़ी बात जो हमें करना है, दिखावापन जो खेती में है, जो हम शरीर में दिखावन के कपड़े पहनते हैं, जो हम बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं पक्के मकान बना रहे हैं, ये जो हम कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो जलवायु के साथ जहर घोल रही है हवा, यहां जहां शहर में बैठे यहां कोई खेती थोड़ी हो रही है, लेकिन जो कुछ भी घुल रहा है आकाश में वो भी यही केमिकल है जो खेतों से उड़कर के आया है। चिड़िया मर रही हैं, बगुले मर रहे हैं, केचुए मर रहे हैं, जो जीवन के जो मित्र पशु थे, सांप किसान का मित्र है, मेढक किसान का मित्र है, केचुआ किसान का मित्र है, मछली किसान की मित्र है, तो आज जो हमने जो ये जहर मुक्त खेती हो इसके लिए जो प्राकृतिक पुरखों ने व्यवस्था की थी हमारे, हम बैल हल से खेती फिर से थोड़ा कर सकते हैं, हम अपने खेत में एक छोटा सा खेत तालाब बना करके पानी रोक सकते हैं, हर खेत पर मेड़ बना सकते हैं, हर मेड़ पर पेड़ लगा सकते हैं, और पानी बचाना पेड़ लगाना और प्राकृतिक खेती करना ये समाज का किसान का ही काम है और किसान कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमको सरकार से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मुहिम चल रही है, हम सब पद्मश्री यहां आए हुए हैं। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय इस दिशा में एक स्टेप ले रहा है और उनके माननीय मंत्री जी, माननीय सचिव महोदय सब मिलकर के इस दिशा में मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आम आदमी भी अब चाह रहा है कि मैं जीवन जीना चाहता हूं, तो इसके लिए हमको प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। और चंदन इस देश की मिट्टी, जो चंदन इस देश की मिट्टी कहा गया है, मिट्टी को मां कहा गया है, मिट्टी पूज्य कही गई है, उस मिट्टी को हम बांझ होने से बचाएं, उसमें जो जहर हो रहा है उससे बचाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में अगर एक आंकड़ा देखें तो उर्वरक की कुल खपत में यूरिया का हिस्सा 55-60% है, तो मतलब कितना बड़ा ये देख सकते हैं प्रतिशत है। और कहीं ना कहीं हमारे शरीर को और जो नई पौध आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, बच्चे, उनमें कुपोषण जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी देन भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कंवल सिंह जी कि क्या आप ऐसा कोई उदाहरण बता सकते हैं जहां यूरिया कम करने से फसल और मिट्टी दोनों को फायदा हुआ हो?
आपने सही कहा है कि यूरिया का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है और इससे कुपोषण हो रहा है, क्योंकि जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें दूसरे तत्वों की बहुत कमी दिखाई दे रही है, जिससे मनुष्य स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम यूरिया के साथ संतुलित खादों का प्रयोग करें तो इससे अच्छा हो सकता है। और साथ में हम जैविक उर्वरक, मतलब की गोबर की खाद, या जैसे अभी वर्मा जी ने बताया ढांचा और या जो सनी, इसको भी मिट्टी में मिलाकर हरी खाद का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। रसायन का हम कम प्रयोग करें और केचुआ दोबारा आ जाए तो केचुए जो अपने मिट्टी खाकर जो अपने अंदर से निकालता हो, 1 किलो केचुआ 1 साल में 250 क्विंटल मिट्टी को अपने अंदर से निकाल देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी होती है और वे 16 तत्व जो हमारे पेट को चाहिए वो मिट्टी में आ जाते हैं। इस तरह का जो यदि प्रयोग देश के किसान कर रहे हैं और अच्छा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन हो रहा है इस तरह से।
रामचरण जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, हमारी ये धारणा है कि हम ज्यादा अगर रासायनिक उर्वरक उपयोग करेंगे, यूरिया का उपयोग करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन मुख्य स्रोत माना जाता है कि यूरिया से आता है, तो हमारी पैदावार भी बहुत ज्यादा होगी, तो ये धारणा को, ये भ्रम को आप कैसे बदलेंगे हमारे किसान भाइयों में जो है?
हम करीब 32 साल से खेती कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि ये गोबर की खाद है, फसल चक्र है और हरी खाद है, ये अपना करके हमारा उत्पादन भी नहीं गिरेगा और हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। ये हमारे किसान भाइयों को करना होगा। एक हम आंकड़ा बताते हैं, करीब 135 करोड़ आबादी हमारे भारतवर्ष की है, 150 करोड़ उर्वरक की बैग का हम प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे पास जमीन जो है वो प्रति व्यक्ति आधा एकड़ है, जबकि हमको 35 किलो ही खाद डालना चाहिए, कहां हम 50 से 60 किलो खाद डाल रहे हैं। 2018 से हमने देखा है कि हर साल फर्टिलाइजर का, खाद का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, जबकि हमारी जमीन नहीं बढ़ रही, जमीन हमारी घट रही है। तो हमारे किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा कि हमको ज्यादा खाद डालने से हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी। जैसे ज्यादा हम खाना खाने से मोटे होंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो हम ज्यादा मोटे भी नहीं हो सकते, हमको संतुलित खाद का प्रयोग करना है। हमारे भारतवर्ष में जलवायु और जमीन और मौसम इतना अच्छा है कि ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम जलवायु के अनुसार खेती करेंगे, समय से खेती करेंगे, कोई खाद डालने से नहीं पैदा, अच्छी हम जुताई करेंगे, अच्छे खेत की तैयारी करेंगे, अच्छा हम बीज बोएंगे और अच्छे समय से डालेंगे, तो कम खाद में ज्यादा उत्पादन होगा। तो हमको खाद संतुलित डालना है और इससे हमारा देश बचेगा और हमारा स्वास्थ्य बचेगा। और जो हम अपनी जो विदेश की मुद्रा है, 85% हम खाद बाहर से मंगाते हैं, कितना पैसा हम डॉलर में देते हैं, तो वो पैसा हमारा जो है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम वो पैसा अपने देश के विकास में खर्च करेंगे, तो कितना बड़ा हमारे देश का विकास होगा, हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। ये पैसा बचेगा जो हम फर्जी खाद डाल रहे हैं, पैदावार भी नहीं बढ़ रही है, न हमारी जमीन बढ़ी है। तो इसको हर हालत में सबका कर्तव्य है हमारे किसान भाइयों का कि हमको कम खाद डालना है, गोबर की खाद डालना, हरी खाद डालना है, फसल चक्र अपनाना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। इसी के साथ हम अपने किसान भाइयों को सलाह देंगे, हम तो करीब 32 साल से ही कर रहे हैं।
परंपरागत खेती और नई तकनीक अगर मिल जाए तो हम एक बार फिर से कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। सेठपाल जी, अगर मैं जानना चाहूँ जो जैविक उर्वरक है और प्राकृतिक तरीकों से, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है, इसके बारे में भी ज्ञानवर्धन करें।
जल, जमीन और जंगल, प्रकृति, संस्कृति और विकृति, ये तीनों चीजें होकर के हमारे, यदि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने भूमि के स्वास्थ्य के प्रति, अपना जो हमारा अनाज का पोषण है, अपने मित्र कीटों को और शत्रु कीटों का संतुलन बना करके हम अपनी खेती को अपनाएंगे और अपने रासायनिक खादों के साथ साथ हमें अपने जैविक विधि से, अपने गोबर की खाद से, हरी खाद के माध्यम से, दलहन तिलहन के समावेश से, फसल चक्र अपनाने से, फसल अवशेष प्रबंधन से, उन तमाम चीजों को अगर हम अपनाएंगे तो हमारे खेतों में जहाँ जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, हमारी लागत कम होगी, हमारा मुनाफा बढ़ेगा, हमारा जो जमीन है उसका संतुलन अच्छा होगा, हमारे भोजन की गुणवत्ता अच्छी होगी और किसान की आमदनी बढ़ेगी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है।
बिल्कुल, आप लोगों ने कई जो आप खेती कर रहे हैं उस बारे में आपने ज्ञान वर्धन किया। बहुत संक्षिप्त में आप लोगों से जानना चाहूंगी, हमारे अगर किसान भाइयों को आप प्रोत्साहित करना चाहें, आप उर्वरक कम इस्तेमाल करें, यूरिया का कम इस्तेमाल करें, तो क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश?
बिल्कुल, मेरा किसान भाइयों से निवेदन और प्रार्थना है, हर किसान के पास एक गौ माँ है और एक गाय के गोबर को 5 एकड़ तक की खेती के लिए पर्याप्त। एक तो मेरा निवेदन यह है कि गौ पालन हो, और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को तालाब पर ले जाइए, खेत पर ले जाइए, कुएं पर ले जाइए। गांव गणराज्य है, ग्राम स्वराज्य है और भारत गांव में बसता है। हमें इस जहर मुक्त खेती को खत्म करके प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, जैसे अभी रसायन मंत्रालय एक कोशिश कर रहा है, और उनके माननीय मंत्री जी का आभार, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और मेरे साथ जो पद्म सम्मानित मेरे मित्रगण ने अमूल्य सुझाव दिए हैं, यह आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, और युवा किसान बने, पढ़े लिखे लोगों को अब किसानी करनी चाहिए।
आप बताएं कि सरकार से किस तरह से सहयोग मिल रहा है ये जो एक नई सोच बदलने के लिए?
जैसे आज सचिव रसायन उर्वरक विभाग ने, मंत्रालय ने हमें बुलाया है और एक पहल की है कि इसमें 8 पद्मश्री अवार्डी किसान बुलाए हैं, और संतुलित खाद का प्रयोग किसान कैसे करे इस विषय पर एक सेमिनार हुआ है, और साथ में आगे काम करने की योजना बनाई है। इससे यदि किसान संतुलित खाद का प्रयोग करेंगे तो आजकल जरूरी है कि आमदनी बढ़ेगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
जी सेठपाल जी, आप संदेश क्या देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को?
मैं अपने किसान भाइयों से संदेश देना चाहता हूँ, जितना हमारा युवा किसान, टैलेंटेड किसान, पढ़ा लिखा किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, उसको एक उद्यमी की तरह से हम वैल्यू एडिशन के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन तमाम चीजों को इस्तेमाल करें, और इन छोटी छोटी तकनीकों को जो हमारे पूर्वजों ने दी थी, जब वैज्ञानिक का ज्ञान और किसान का श्रम मिलता है तो निश्चित रूप से एक नई रास्ते की खोज होती है।
जी रामचरण जी, आपका जो फार्म हाउस है वो देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं, तो आप बताएं कि क्यों आते हैं और कैसे आप युवा शक्ति और जो हमारे किसान भाई जो उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे?
किसान भाइयों को बताते हैं कि देखिए, हमने ये खाद डाला है, इसमें नहीं डाला है, इसमें डाला है, इसमें हमने गोबर की खाद प्रयोग की है, ये फसल चक्र अपनाया है। तो हमारे किसान भाई देख करके खेती करते हैं तो हमको बताते हैं कि हमने केला काट करके आलू लगाया है बगैर हमने फर्टिलाइजर डाली है। तो ये किसान भाई आते हैं और देख करके सीखते हैं और सीख करके खेती करते हैं, और ये हमारे किसान भाइयों को करना होगा कि हम प्रतिदिन खाद की खपत बढ़ा रहे हैं, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो खाद को हमको कम करना है, देश बचाना है, देश की मिट्टी बचाना है, अपने देश का पैसा बचाना है। हमारा अपने किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप संतुलित मात्रा में ही खाद डालें।
स्वस्थ मिट्टी ही अच्छी फसल की नींव है। अगर हम आज जागरूक होकर सही मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी परीक्षण करवाएंगे और जैविक विकल्प अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ जमीन छोड़ पाएंगे। आप सभी आकाशवाणी आए और हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर पद्म पुरस्कृत किसानों के साथ विशेष बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किसान उमाशंकर पांडे, रामशरण वर्मा, कमल सिंह चौहान और सेठपाल सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
चर्चा का विषय है।